आहान को देखने के बाद चाहत काफी बेचैन हो गई थी। उसे यही लग रहा था कि आहान उसे ढूंढ लेगा और फिर वापस उसे मुंबई ले जाएगा। चाहत ने कनाडा छोड़ने का सोच लिया था, लेकिन फिर सिम्मी आंटी ने उसे समझाया कि आहान को कुछ याद नहीं है, इसलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऊपर से आहान चाहत के एड्रेस के बारे में भी नहीं जानता था। सिम्मी आंटी के समझाने पर चाहत थोड़ा रिलैक्स हुई और अपने रूटीन को फॉलो करने लगी। रेस्टोरेंट में जब वो अपने कस्टमर का ऑर्डर लेने के लिए उनकी टेबल के पास गई तो उसने देखा वहां आहान और तनु थे। उन्हें देखकर चाहत वहीं पर जम गई। चाहत ने एक नज़र आहान की तरफ देखा और फिर जल्दी से पलटकर वहां से जाने लगी। तभी आहान ने उसकी बाजू काफी कसकर पकड़ी और उसे खींचकर अपने तरफ पलट लिया। आहान चाहत की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है कि मैं खुद की शख्सियत तक भूल गया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? अगर जाना था तो अकेली चली जाती, मेरे बच्चे को भी अपने साथ ले आई। आहान चाहत से काफी रूडली बात कर रहा था क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। चाहत इन सब में काफी घबरा गई। तनु ने आहान का हाथ चाहत से अलग किया और उसे डांटते हुए कहा, आहान, मैंने तुम्हें इसलिए सारा सच नहीं बताया था कि तुम यहां आकर पूरा ब्लेम चाहत पर डाल दो। इसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हें आराम से बात करनी होगी, ये प्रेग्नेंट है। आहान ने गुस्से से तनु की तरफ देखा और फिर बोला, हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये प्रेग्नेंट है और मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे छोड़कर चली गई, जरूर इसके दिल में मेरे लिए प्यार तो बिल्कुल नहीं होगा। किस वजह से थी फिर ये मेरे साथ? क्या मैंने अपना गुस्सा शांत करने के लिए तुम्हारी तरह इसे भी कोई फीस पे की थी? या आहान गुस्से में बोले जा रहा था, तभी चाहत ने उसके गाल पर कस के तमाचा लगाया। आहान जलती हुई निगाहों से चाहत की तरफ देख रहा था तो चाहत भी इस वक्त गुस्से से काफी हाइपर हो रखी थी। चाहत आहान पर चिल्ला कर बोली, बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों और रुतबे पर? आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ मिस्टर आहान ओरॉय, मैंने आपसे कोई एहसान नहीं लिया था। प्यार किया था तभी शादी करने जा रही थी, पर मुझे क्या पता था जिस शख्स से मैं प्यार करती हूँ उसकी सच्चाई कुछ और ही होगी। चिल्लाने की वजह से चाहत का बीपी हाई होने लगा और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तनु ने जल्दी से उसे संभाला और उसे बिठाकर पानी देने लगी। तनु आहान की तरफ देखकर गुस्से में बोली, तुम्हारी वजह से इसकी तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा पेशेंसली बात नहीं कर सकते तुम? हर वक्त गुस्सा करना जरूरी नहीं होता है। चाहत की आंखों में आंसू थे तो वहीं उसके रोने की आवाज़ सुनकर सिम्मी आंटी और उनके हस्बैंड मिस्टर जसप्रीत खेवाल बाहर दौड़ कर आए। चाहत की हालत खराब देखकर सिम्मी आंटी जल्दी से बोली, क्या हुआ है चाहत तुम्हें, और ये लोग कौन हैं? तुम रो क्यों रही हो बिच्चे? आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ इन्हें कहें कि यहाँ से चले जाएं, चाहत ने उन्हें देखकर सुबकते हुए कहा। वहाँ मामला बिगड़ते जा रहा था, वो भी आहान के गुस्से की वजह से। अगर वो चाहत से नॉर्मली बात करता तो शायद न चाहत की तबीयत खराब होती और ना ही वहाँ इतना हंगामा होता। चाहत के कहते ही आहान चिल्लाकर बोला, और होती कौन हो तुम मुझे निकालने वाली? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए चाहत शर्मा, क्यों छोड़कर गई थी तुम मुझे? चाहत ने अपनी लाइफ में पहली बार आहान के मुंह से अपना नाम सुना होगा। एक पल में उसके दिल के हजारों टुकड़े हो रहे थे। चाहत ने आहान की तरफ देखा और फिर खुद को सख्त करके कहा, अब जानने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको तो कुछ याद भी नहीं है। आपको छोड़ने की मेरे पास हजारों वजह थी आहान ओबेरॉय, पर फिर भी नहीं छोड़ा। प्यार किया इस उम्मीद से कि आपको बदल पाऊंगी, लेकिन आपने तो मेरा इकलौता सहारा, मेरी मम्मा ही मुझसे छीन ली। चलिए, आपको तो कभी याद नहीं आएगा तो मैं ही बता देती हूँ, जान ली है आपने मेरी मम्मा की और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, मैं शादी से भाग गई थी क्योंकि सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। आहान अपने गुस्से में मामला और बिगाड़ता उससे पहले तनु ने बीच में बोलते हुए कहा, एक सेकंड, और ये तुम्हें किसने कहा कि आहान ने तुम्हारी मम्मा को मारा है? इसे कुछ याद नहीं है, पर मुझे सब कुछ याद है। जब तुम्हारी माँ की मौत हुई थी तब आहान मित्तल हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं था। उस लड़की अक्षरा ने बताया था मुझे, खुद नहीं मारा होगा तो किसी को भेज दिया होगा। वैसे भी ये सब काम करने इनके लिए कौन सा मुश्किल है? उस लड़की को भी इन्होंने किडनैप करके रखा था। शादी के दिन उसे किडनैप करके बाहर उसके बारे में न्यूज़ फैला दी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। आप इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो आहान? चाहत ने नफरत भरी निगाहों से आहान की तरफ देखा। आहान पर चाहत की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वैसे भी उसे कुछ याद नहीं था तो उसे इस बात की तकलीफ नहीं थी कि उसकी डॉल उसके बारे में क्या सोचती है। आहान को याद था तो सिर्फ इतना कि वो लड़की जो उसे संभालती थी वो किसी सेल्फिश रीजन की वजह से उसे छोड़कर चली गई। उसी की वजह से आहान का एक्सीडेंट हुआ था। आहान और चाहत की वहाँ अच्छी खासी बहस चल रही थी। सिम्मी आंटी जानती थी कि चाहत जितना बहस करेगी उसकी तबीयत उतनी ही खराब होगी। वैसे भी डॉक्टर ने उसे टेंशन लेने से मना किया था। सिम्मी ने सख्त लहजे में आहान और तनु से कहा, मैं नहीं जानती तुम दोनों कौन हो, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारी वजह से चाहत और उसके बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। बेहतर होगा आराम से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला रही हूँ। नहीं जानती तो आपको जानना चाहिए। आहान ने सख्त निगाहों से सिम्मी की तरफ देखकर कहा, आप जिस चाहत की इतनी फिक्र कर रही हैं उसके होने वाले बच्चे का बाप हूं मैं, और इस पर न सही लेकिन मेरे बच्चे पर मेरा पूरा हक है। ठीक है, बुला लीजिए पुलिस को, अब वही फैसला करेगी। सिम्मी के धमकी देने के बाद आहान ने चाहत की तरफ देखकर कहा, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारी मम्मा की जान ली है? प्रूफ करो, फिर हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। अगर कोई प्रूफ नहीं है, चलना होगा तुम्हें मेरे साथ। मुझे तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है और ना ही कोई प्यार। नफरत करता हूं मैं तुमसे, चाहे पास्ट में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी भी फीलिंग क्यों ना रही हो, लेकिन फिलहाल का सच ये है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज मेरी ये हालत है। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए, और उसके पैदा होते ही मिल जाएगी तुम्हें आज़ादी डॉल। बोलते हुए आहान ने डॉल शब्द पर जोर दिया। वो सब आपस में बात ही कर ही रहे थे कि तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। आहान ने उस गाड़ी को देखते ही हल्की सी स्माइल दी। उस गाड़ी में से एक आदमी निकल कर आया जिसने ब्लैक कोट पहना था। वो कपड़ों से ही कोई लॉयर लग रहा था। उस आदमी ने आहान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर चाहत के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट रखते हुए कहा, मिस चाहत शर्मा, आप आहान ओबेरॉय के बच्चे की माँ बनने वाली है। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, आपको मिस्टर ओबेरॉय के साथ रहना पड़ेगा, और ये कोर्ट के पेपर्स हैं। आहान ओबेरॉय आपका हर तरीके से ख्याल रखेंगे। अगर उनकी तरफ से किसी चीज़ की कमी आई तो फिर आप कानून की मदद ले सकती हैं, लेकिन अभी आपको इन्हीं के साथ जाना होगा। आप इस तरह मुझे मजबूर नहीं कर सकते, मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना है, चाहत उस पर चिल्लाकर बोली। ठीक है, तो फिर आप अपना लॉयर बुलाएं और इसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील कर सकती हैं। लॉयर ने बिना किसी भाव के जवाब दिया।
सबको आहान पर गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि तनु को भी। आहान ने ये स्टेप तनु से पूछे बिना लिया था। वो हैरानी से आहान की तरफ देख रही थी। तभी चाहत बोली, और आपके पास क्या सबूत है कि ये बच्चा इसी का है? इसे तो कुछ याद भी नहीं है। आहान ने गुस्से से चाहत की तरफ देख कर कहा, ठीक है फिर डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी, प्यार से या जबरदस्ती, तुम पर डिपेंड करता है। ले जाकर तो यहां से रहूंगा मैं तुम्हें। बोलते हुए उसने चाहत को अपनी गोद में उठा लिया। हालांकि इससे चाहत काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी और उसका वेट ज्यादा होने की वजह से आहान को भी दिक्कत हो रही थी, पर वो उसे सीधा अपनी गाड़ी के पास लेकर जा रहा था। छोड़िए मुझे आहान, आप इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं जो आप हर बार मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, चाहत आहान के हाथ पर मारते हुए बोली। आहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे सीधा गाड़ी में लेकर जा रहा था। वहीं मिस्टर और मिसेस ग्रेवाल उसके पीछे जा रहे थे। तनु ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं आपसे वादा करती हूं कि चाहत को कुछ नहीं होगा, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। आहान को कुछ याद नहीं है, इस वजह से वो गुस्सा कर रहा है, वरना वो चाहत से बहुत प्यार करता था। हाँ, दिख रहा है कितना प्यार करता है, उसकी माँ को मारा है तुम्हारे उस आहान ने, सिम्मी ने तनु की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा। उसे गलत फहमी हुई है, मैं आहान को अच्छे से जानती हूँ, वो किसी की जान नहीं ले सकता, तनु ने जवाब दिया और फिर अपना कार्ड सिम्मी के हाथ में थमाते हुए कहा, ये मेरे नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उन दोनों की ही फ्रेंड हूँ और यकीन मानिए, चाहत आहान के साथ बहुत ज़्यादा सेफ है। इतना कहकर तनु वहाँ से चली गई। सिम्मी ने उम्मीद भरी नज़रों से जसप्रीत की तरफ देखा तो उन्होंने बेबसी से कहा, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, एक ना एक दिन तो इसे यहाँ से जाना ही था। मुझे इसके यहाँ से जाने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो उस आहान ओबेरॉय के साथ जाने से, चाहत उसके साथ खुश नहीं है, वो उसके साथ कैसे ज़बरदस्ती कर रहा था, देखा ना आपने, सिम्मी ने जवाब दिया। उस लड़की ने हमें अपने नंबर दिए ना, हम उसके ज़रिए बात कर लेंगे, चलो अब अंदर आओ और ख़ुद को संभालो, जसप्रीत ने मायूसी से कहा और सिम्मी को अंदर ले गए। वहीं गाड़ी तनु ड्राइव कर रही थी, जबकि गाड़ी की बैक सीट पर आहान और चाहत बैठे हुए थे। चाहत बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी तो आहान उसके दोनों हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। उसने अपने पैरों से चाहत के पैरों को भी बांध रखा था। चाहत प्लीज जिद मत करो, तुम भी किसकी बात मान रही हो, उसे अक्षरा गोयंका की जो विजय ओबेरॉय के साथ है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था, सब कुछ बिखर कर रह गया, ऊपर से आहान को कुछ याद नहीं है, तनु गाड़ी ड्राइव करते हुए चाहत को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो झूठ बोल रही होगी, लेकिन आहान ने उसे किडनैप करके रखा था, ये सच तो नहीं बदल सकता। आहान खुद को बेगुनाह प्रूफ कर दे, फिर मैं मान जाऊंगी कि मेरी मम्मा को इन्होंने नहीं मारा, मम्मा की जान गई है तनु, और मैं इतनी आसानी से इस मामले को जाने नहीं दूंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे, जबकि यहाँ तो मुझे कोई जानता तक नहीं है, चाहत ने हैरानी जताते हुए कहा। फिर उसने आहान की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने बिना कुछ कहे सार्कास्टिक वे में सिर हिला दिया। आहान ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाला और चाहत के सामने कर दिया। ये उनके रेस्टोरेंट का कार्ड था। चाहत समझ गई थी कि आहान ने उसे उस रेस्टोरेंट के नाम के जरिए ही ढूंढा था, और अब उसके पास आहान से बचने का और कोई रास्ता नहीं था। पहले वाला आहान होता तो शायद चाहत उसे प्यार से समझा भी सकती थी, लेकिन अब ना तो आहान के दिल में चाहत के लिए प्यार था और ना ही कोई दया का भाव। सॉरी फॉर लेट पार्ट, ऐसा नहीं है मेरे पास लिखा हुआ नहीं था, बस बाकी कहानियों के चक्कर में पोस्ट करना भूल गई। पार्ट पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, क्या आहान खुद को प्रूफ कर पाएगा या चाहत के बुरे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं।